नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो ने लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग झील के नजदीक एक गांव तक अपनी 4G सेवाओं की पहुंच बढ़ा दी है। ये एक ऐसा क्षेत्र जो बीते वर्षों में भारत और चीन के बीच टकराव का केंद्र रहा है। अधिकारियों ने कहा कि रिलायंस जियो ने लद्दाख में पैंगोंग झील के पास स्पंगमिक गांव में अपनी 4G वॉइस और डेटा सेवाएं शुरू की हैं। अधिकारियों ने बताया कि जियो पैंगोंग और उसके आसपास क्षेत्र में 4G मोबाइल सुविधा प्रदान करने वाला पहला नेटवर्क है। ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लद्दाख से लोकसभा सांसद जामयांग सेरिंग ने स्पंगमिक गांव में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया है। जामयांग ने कहा कि क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा, इस कदम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटकों और जवानों को निर्बाध संपर्क मिल सकेगा। जियो ने कहा कि वो सभी को डिजिटल रूप से जोड़ने और समाज को सशक्त बनाने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप लद्दाख क्षेत्र में अपने नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को समझने में अधिक उन्नत और वक्त से आगे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों के प्रभारी सीतारमण ने डिजिटलीकरण के संदर्भ में सुरक्षा तंत्र की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2020 और उसके बाद के दशकों में डिजिटल तरीकों का महत्व बढ़ता जाएगा। सीतारमण आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित दिवस समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को डिजिटलीकरण के लिहाज से वक्त से आगे रहना चाहिए, ताकि निष्पक्ष और जवाबदेह प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग ना हो। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड बुधवार को गुवाहाटी, मुंबई और सिलीगुड़ी सहित 14 स्थानों पर लगभग 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करेगा। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए विशेष दिन के रूप में बुधवार को चिन्हित किया गया है। ये आयोजन भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक प्रतिष्ठित सप्ताह के तहत किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा, देश भर में 14 स्थानों पर लगभग 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। इन स्थानों में गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा, कांडला, पटना और सिलीगुड़ी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगी। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक ने मंगलवार को ऋण दरों में 0.35% की वृद्धि की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे से पहले HDFC बैंक ने ये कदम उठाया है। बैंक द्वारा 2 माह में ये ब्याज दरों में दूसरी वृद्धि है। 2 बार में HDFC बैंक ने ऋण पर ब्याज दरों में 0.60% की वृद्धि की है। मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने 4 मई को रेपो दर में 0.40% की बढ़ोतरी की थी। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक बुधवार को पेश की जाने वाली अपनी मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत रुख को और सख्त कर सकता है। HDFC बैंक की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार 7 जून से बैंक ने अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर को 0.35% बढ़ा दिया है। बैंक की 1 साल की MCLL 7.50% से बढ़कर 7.85% हो गई है। वहीं 1 दिन की MCLR 7.15% से बढ़कर 7.50% और 3 साल की MCLR 7.70% से 8.05% हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी प्रधान ब्याज दर को 5 सप्ताह में दूसरी बार बढ़ा दिया, जिसके बाद नकद दर 0.35% से बढ़कर 0.85% हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मई को अपनी पिछली मासिक बोर्ड बैठक में दर में 1/4% की वृद्धि की थी। अप्रैल में जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा स्फीति बढ़कर 5.1% हो गई। इसके बाद से ही दर में बढ़ोतरी की उम्मीदें जताई जा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने ब्याज दर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है क्योंकि फिलहाल वहां महंगाई कम होने के आसार नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की स्टार्टअप प्रिस्टीन केयर ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंच लाइब्रेट का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि इस अधिग्रहण से स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में तालमेल स्थापित होगा और कंपनी प्राथमिक देखभाल खंड में प्रवेश कर सकेगी। दोनों कंपनियों ने हालांकि सौदे के वित्तीय विवरण की जानकारी नहीं दी। सौदे के तहत लाइब्रेट के 150 कर्मचारी प्रिस्टीन केयर में शामिल होंगे। प्रिस्टीन केयर के सह संस्थापक हर सिमरबीर सिंह ने बयान में कहा, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए लाइब्रेट रणनीतिक रूप से हमारे लिए एकदम सही है, जिसकी ऑनलाइन परामर्श सेवाओं के जरिए रोगियों को प्राथमिक देखभाल की सुविधा दी जा सकेगी। एसआर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में उसके रानीगंज पूर्वी ब्लॉक से कोल बेड मीथेन गैस का उत्पादन प्रतिदिन 800,000 घन मीटर को पार कर गया है और अगले 24 से 30 महीनों में उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।